حدی
بچوں
کو کھانا تو
کھانا
چاہیے دن میں کھانا کھانا چاہیے بچہ ہوا ہاں جی ہمارا دھیان یگیہ ہے کیا ہے دھیان یگیہ دھیان یگ میں بھوجن بھی ہے تو گیان جل بھی ہے اب جو بھوجن بنتا ہے वो भोजन एक तैयार करता है जैसे वो पेट का भोजन है तो पेट का भोजन एक किसान तैयार करता है कि अनेक मिलकर के तैयार करते हैं है अनेक मिलकर के तैयार करते हैं उसको अनाज कहते हैं वो अनाज है स्थूल पेट का भोजन और ये जो योग बल है ये कौन सा भोजन है बुद्धि रूपी पेट का भोजन तो एक तैयार करेगा उससे काम चल जाएगा या संगठित होकर के योग बल से वाइब्रेशन बनाएंगे उससे प्रकृति के पांच तत्व सतो प्रधान बनेंगे है हाँ जी तो कभी अंदर में ये बात नहीं आना चाहिए कि हम यज्ञ में संगठित होकर के नहीं चलेंगे हम अपने घर में बैठ करके योग लगा लेंगे जो संगठित होकर के योग रूपी खुराक तैयार करेंगे और उस योग रूपी खुराक से खुशी आती है या दुख आता है तो जो खुशी आती है वो कोई अकेला भोगने की चीज है यह सबको मिलनी चाहिए तो हमारे संगठित प्रयास से वो याद के बल की शक्ति पैदा होती है ये प्रैक्टिकल बात है देखो इस्लाम धर्म के लोगों ने इस दुनिया में सबसे जास्ती लंबे समय तक राजाई क्यों की है क्योंकि सभी मुसलमानों का संगठित जो याद का पुरुषार्थ है उसकी एकाग्रता काबा में रखी रहती है तो संगठन की पावर उनको मिलती है ऐसे ही हम बच्चे अगर याद की शक्ति इकट्ठी करेंगे तो वो शक्ति हमारे अकेले के काम आएगी या सारी दुनिया के लिए काम आएगी प्रकृति सतो प्रधान बनेगी तो सारी दुनिया को सुख देगी या सिर्फ हमको ही सुख देगी सारी दुनिया को सुख देगी तो ये जो ज्ञान यज्ञ है और उस ज्ञान यज्ञ से जो योग बल पैदा होता है वो बचा हुआ है सबके लिए बचता है अब जो जितना ले पाए तो सिर्फ है ये ब्रह्मा भोजन पेट के भोजन की बात नहीं है। ब्रह्मा भोजन भी ब्राह्मणों के द्वारा बनाया जाता है। पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं तो बुद्धि पवित्र बनती है। ये देह का जो याद का भोजन है ये भी पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा बनाया जाता है और ये सबके लिए है। हम उस संगठन की शक्ति को जितना खींच पाते हैं एकाग्र रह करके, नहीं तो कोई कोई तो ऐसे होते हैं संगठन में बैठते हैं बाहर की दुनिया को याद करते हैं तो वो वातावरण को बिगाड़ते हैं या सुधारते हैं, बिगाड़ते हैं, आपस में बातें करते हैं, तानाकूसी करते हैं तो जो याद का वातावरण है वो टूटता है। इसलिए बताया कि यज्ञ में जो बचा हुआ है जो भी शक्ति बची हुई है उसको अच्छे से यूज करना चाहिए, अपने लिए भी यूज करें और दूसरों के भी काम आवे। और पांच मुख दिखाते हैं ब्रह्मा को, कौन कौन है ब्रह्मा की चार भुजाएं तो समझ में आई है, आई। और ये भुजाएं अपने आप चलती हैं या इनको कोई चलाने वाला है? तो जो चलाने वाला है वो पांचवा है। क्या ये भुजाएं जो चलती हैं इनको चलाने वाला ऊपर बैठा हुआ है या भुजाओं के साथ बैठा हुआ है? ऊपर बैठा हुआ है। ऐसे ही विष्णु की जो चार भुजाएं हैं या ब्रह्मा को जो चार भुजाएं दिखाते हैं, चार मुख दिखाते हैं, उन चार मुखों को चलाने वाला एक अंदर में है वो पांचवा मुख है जो ऊपर की ओर दिखाया जाता है। जो चार मुख हैं वो चार दिशाओं में देख रहे बोल रहे हैं, लेकिन जो पांचवा मुख है वो ऊपर की ओर है। तो कौन सा श्रेष्ठ हुआ? जो ऊपर को देख रहा है वो श्रेष्ठ है, वो ही उन चारों को चलाता है। और पांच ब्रह्मा है, हाँ, जो ब्रह्मा की भुजाएं हैं या विष्णु की जो भुजाएं हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, तो जो विष्णु की भुजाएं हैं उनमें कोई भुजाएं ऊपर की हैं और कोई भुजाएं नीचे की हैं, कोई भुजाएं दाईं ओर की हैं और कोई भुजाएं बाईं ओर की हैं। तो जो दाईं ओर की भुजाएं हैं उन भुजाओं में ब्रह्मा सरस्वती ऊपर की भुजाएं में क्या दिखाते हैं? स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। वो स्वदर्शन चक्र है पहले पहले किसने घुमाया? ओम राधे माँ ने घुमाया। और सुदर्शन चक्र की मुख्य पॉइंट निकाली जो सबके काम आ रही है। पहले पहले यज्ञ में लाल लाइट का गोला याद किया जाता था, मम्मा ने पॉइंट निकाला कि जब आत्मा ज्योति बिंदु है तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु होना चाहिए, सांप का बाप भी लंबा लंबा होना चाहिए, हाथी का बाप भी मोटा ताजा होना चाहिए, चींटी का बाप भी चींटी जैसा होना चाहिए, तो आत्माओं का बाप भी आत्मा की तरह ज्योति बिंदु होना चाहिए। और सोमनाथ मंदिर में इसका प्रमाण मिलता है, वो सतोप्रधान स्टेज में बनाया गया था। कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर में जो लिंग था वो लाल पत्थर का था और उसमें बीच में हीरा जड़ा हुआ था। इसका अर्थ बिल्कुल क्लियर हो गया। हीरा किसकी यादगार है? शिव की यादगार है। और जो पत्थर का लिंग बना हुआ है बड़ा, वो उसकी यादगार है जो पत्थर बुद्धि बनता है कलयुग के अंत में आकर के। उस सतयुग में यादगार द्वापर के आदमी पूजी जाती है स्वर्ण लिंग, बाद में रजत लिंग बने, फिर बाद में ताम्र लिंग बने और अंत में पत्थर लोहे के लिंग बनने लगे। तो ये आत्मा की यादगार है, जिस आत्मा के शरीर में शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करते हैं। इसलिए सिर्फ लिंग को याद नहीं करना है, क्या करना है? उस लिंग में ज्योति बिंदु बाप को याद करना। वो शिव के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में जो लिंग रखा हुआ है इसकी यादगार है, साकार की यादगार है। उस लिंग में भक्त जाकर के चंदन का बिंदु लगाते हैं, वो बिंदु किसकी यादगार? शिव बाप की यादगार। लिंग को शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते। क्या कहते हैं? शिवलिंग माने शिव उसमें प्रवेश करके इंद्रियों को कंट्रोल करता है, शंकर नहीं कंट्रोल कर पाता। जब शिव आते हैं महाशिवरात्रि में, महान घोर अंधकार की रात्रि में, ऐसी घोर अंधकार की रात्रि, अज्ञान की रात्रि, जिसमें ब्रह्मा कुमार कुमारी भी अज्ञान में है, पाप को नहीं जानते। एडवांस में जो ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं वो भी आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, बाप को नहीं जानते। बाहर की दुनिया वाले तो बाप को जानते ही नहीं अज्ञान में। तो सारी दुनिया जब घोर अज्ञान अंधकार में फंस जाती है तब बाप आते, जो बोला है कि तुम बच्चे तमोपदान से सतोपदान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हो। तो कब से ये 40 वर्ष? जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ। वो मनुष्य शक्ति का बाप 76 से प्रत्यक्ष होता है और 76 से प्रत्यक्ष होने के बाद 40 वर्ष लगते हैं उसे सतोप्रधान बनने। तो सतोप्रधान कब बनता है? जब शिव यादगार है, शिव जयंती महाशिवरात्रि घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि जब 40 वर्ष पूरे होते हैं तो वो बाप शिव प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष रूप से, गुप्त रूप से नहीं। अभी तक कौन सा पाठ चल रहा है, गुप्त क्या पाठ चल रहा है या प्रत्यक्ष पाठ चल रहा है? गुप्त पाठ चल रहा है। फिर वो शिव बाप प्रत्यक्ष पाठ बजाता है जिसकी यादगार महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि में वो शिव बाप प्रत्यक्ष हो जाते हैं और जो देखे इन आंखों से उस बाप को और जो इन कानों से उस बाप के दो शब्द भी सुने, ज्यादा नहीं, अभी तो ब्रह्मा के द्वारा कितना बोला गया, सुनने वालों ने कानों से सुना ना, देर बोला गया, और शंकर द्वारा भी थोड़ा बोला गया कि देर बोला गया। निश्चय पक्का होता है किसी को है, एवरलास्टिंग निश्चय पैदा हुआ किसी को हुआ कि निश्चय अनिश्चय के डोले में डोलते रहते हैं, सब डोलते हैं या नहीं डोलते हैं? डोलते हैं। फिर क्या होगा, जो देखेगा जो कानों से सुनेगा उसकी बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ जाएगा कि सारी दुनिया का बाप इस सृष्टि पर आ गया। समझ में आया है? है? परम ब्रह्म वो है जो उन चारों भुजाओं को चलाने वाला ऊपर है। जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो किसमें प्रवेश करते हैं ज्ञान का बीज डालने के लिए? ब्रह्मा में, सरस्वती में, लक्ष्मी में, किसमें प्रवेश करते हैं? प्रजापिता में प्रवेश करते हैं। तो वो ही परम ब्रह्म हुआ, वो प्रजापिता वाली आत्मा जब संचक्कर से शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होती है तो वो संपन्न रूप नहीं है, वो सारी दुनिया का गुरु नहीं है। सारी दुनिया शंकर को बाप मानती है, मानती है नहीं मानती, लेकिन जो आदि में हुआ आदम, जिसमें शिव बाप ने पहले पहले प्रवेश किया आदि, को सारी दुनिया मानती है, उसी के लिए बोला गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, बड़े से बड़ा ब्रह्म है, परम माने बड़ा, बड़े से बड़ा ब्रह्म वो है। और
किसी का प्रश्न है,
किसी
का प्रश्न है, समय पर कहीं सेवा सामने आ जाती है तो कौन सा सेवा करना है, कौन सा बात में करना है, समझ में नहीं आता, कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी समझ में नहीं आता है।
हाँ तो उसको क्लैरिफाई करो, कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? वाचा की सेवा आती है, कर्मेंद्रियों की सेवा आती है, वाइब्रेशन की सेवा आती है, कौन सी सेवा सामने आती है? हाँ बताओ कौन कौन सी, कई माने कौन कौन सी
वो किसी का है ना,
है
किसी का प्रश्न है।
और तो किसी से पूरा पूछो, फिर उसके बाद बताओ। हाँ
माता जी पोस्ट के लिए आई थी, तो
हाँ
पोस्ट के लिए आये थे, वो अच्छी बात है उसकी जा रही है।
हाँ
उन्होंने पोस्ट में ना पोस्ट नहीं हुआ,
हाँ
तो आगे चलकर अटेंड देना है, तो बात
खुशी हुई थी क्यों नहीं देना। अरे खुशी हुई है तो भी नहीं देना है, उनको खुशी हो रही है तो देना है ना। शास्त्रों में है, में है माता दाता पितामहम, क्या मैं माता भी हूँ पिता भी हूँ, सब संबंध मेरे से है, मैं सर्व संबंधी हूँ, मैं माने एक या दो या जितने संबंध है उतने अलग अलग एक, इसलिए संस्कृत में ये गायन है तमेव माता, तुम माने तू एक को कहा जाता है, तू ही मेरी माता है तू ही मेरा पिता है, तो एक है ऐसे नहीं कि ब्रह्मा दादा लेखराज के रूप में माता है और प्रजापिता के रूप में पिता है, नहीं वो एक ही पिता है, एक ही हमारा टीचर है और एक ही हमारा सदगुरु है। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सदगुरु तो साकार होता है, सदगति करने वाला सदगुरु, सदगति जो है वो शरीर के साथ होगी या बिना शरीर के होगी? शरीर के साथ सदगति नहीं तो गति, गति माने ऊपर जाना, दुर्गति माने नीचे जाना, और सदगति माने शरीर के साथ सुख प्राप्त कराने वाली गति, जिसमें कोई भी प्रकार का दुख न हो, तो वो सदगति भगवान बाप के द्वारा इस मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा को मिलती है, ऐसे नहीं सिर्फ देवताओं को मिलती है। हाँ देवताओं को अनेक जन्मों के लिए मिलती है और हर आत्मा को कम से कम एक जन्म के लिए सदगति मिलती है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा जीसस में प्रवेश करती है, तो जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो पावरफुल है या जीसस पावरफुल है? ज्यादा पावरफुल है, तो जीसस को सूली का दुख सहन करना पड़ता है, जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो तो फट से निकल के बाहर हो जाती है, वो दुख नहीं सहन कर सकती, पहले जन्म में उसको सुख ही महसूस करना है उस शरीर के द्वारा। तो एक जन्म के लिए हर आत्मा को शरीर के साथ सुख रूपी सदगति मिलती है, और ये सदगति देने वाला सदगुरु साकार में होना चाहिए। क्या? साकार में होना चाहिए, तो वो एक ही है। वो हमारी माता भी है। कैसे? सनातन धर्म में हिंदुओं में दिखाया जाता है आधा नारी सर, आधा स्त्री आधा पुरुष। वैसे भी स्त्री को अर्धांगिनी कहते हैं, तो एक ही शरीर है और एक ही शरीर में दो पात्रधारी हैं, आत्मा, जिन्हें हम लोग कहते हैं बाप दादा। क्या? बाप दादा कंबाइंड हैं या अलग अलग शरीरधारी हैं? कंबाइंड है। एक ही शरीर में राम वाली आत्मा भी है जिसमें शिव प्रवेश है, और उसी एक शरीर में माता के रूप में सहन शक्ति का आधार बनने वाली ब्रह्मा की आत्मा भी है। वो ब्रह्मा की आत्मा एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में अभी भी पालना कर रही है या नहीं कर रही है? हैं? कर रही है। माता के बगैर तो पालना हो ही नहीं सकती। वो माता भी है, पिता भी है, एक ही है, व्यक्तित्व एक है, पर्सनालिटी एक है, आत्मा है, बलों से अलग अलग। अकाल तत्व। हाँ जी, कौन से धर्म में अकाल तत्व बहुत मान्यता प्राप्त है? सिख धर्म में। सिख धर्म की कौन सी आत्मा है जो अकाल मूर्त है? इसके लिए बोला है कि सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो डूबने से नीचे जाती है या ऊपर आती है? नीचे जाती है। वो ऐसी नैया है कि डूब नहीं सकती। वो आत्मा रूपी नैया है डूबने वाली नहीं है। इसका पार्ट है जिसके लिए सिख लोग कहते हैं राज करेगा खालसा, सारी दुनिया के ऊपर राज करेगा। सारी दुनिया में सब पतितम उपधान बन जाते हैं एक को छोड़ करके, कि कोई रह जाता है? है एक भगवान बाप जिस मुकर्र रथ में प्रवेश करते हैं उसे छोड़ करके सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं, या कोई रह जाता है? और अज्ञान अंधकार में डूबेंगे तो पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? तो जब सब पतित अज्ञानी पतित असुर बन जाते हैं, तो उन असुरों का गला काटने के लिए कौन प्रस्तुत हो जाती है? है महाकाली। क्या ये गला काटने की बात है? है हाँ, तो देवान की बात है तब बता देवान काट देती है और उसका अपना देवान बचा रहता सांप के ऊपर राज्य करती है। वो अकाल तत्व है क्या? हमारा अकाल तत्व क्या है? हम आत्माओं का अकाल तत्व प्रकृति के मध्य में कहाँ है? कुटी बड़ी पूरी कुटी जहाँ आत्मा रहती है। वो जगदम्बा भी ऐसा पार्ट बजाने वाली है। कैसा? जैसा आज मुरली में बताया कि रहती है भले घर गृहस्थ की कीचड़ की दुनिया में, कोई भी धर्म से कनेक्टेड बच्चों को जन्म देती है। जगत की अम्बा है, जैसे का सूर्यवंशियों की अम्बा है। सारे जगत में सब धर्म आते हैं, जो कोई एक धर्म की बात है तो सब की अम्बा है। और वो सब की अम्बा सब बच्चों के ऊपर कंट्रोल करती है। सबको काल खाता है, उसको कोई काल नहीं खाता। अकाल तत्व है। क्यों? इसलिए कि घर गृहस्थ के कीचड़ में रहते हुए भी अनेक धर्म की आत्माओं के संसर्ग संपर्क में रहते हुए भी बुद्धि से उपराम रहती है। इसलिए माँ काली का जो पुराना चित्र है, मूर्तियां हैं, उनमें मस्तक में शंकर को बैठा दिखाया गया। क्या मतलब है? वो भगवान के मुकर्रर रूप को याद करती है, भले किसी के साथ रहना पड़े, तन से रहना पड़े, इंद्रियों से रहना पड़े, कोई के संग में भी रहना पड़े, परंतु बुद्धि से एक बात के साथ। ये प्रकृति को अकाल तत्व कहते हैं। और है? भूत प्रेतों के प्रभाव में न जाएं, दूसरों के प्रभाव में न जाएं, इसके लिए क्या करना है? ये तो बाप की बात माननी है, कोई की बात नहीं सुननी। क्या दूसरों की सुनते हैं तभी तो प्रभावित होते हैं? तो एक बात से प्रभावित होने, प्रभावित माने प्रजा, जो यहाँ किसी से प्रभावित होते हैं वो वहां 84 जन्मों में उनकी प्रजा बनेंगे। इसलिए हमें किसकी प्रजा बनना है? प्रजा ही बनना है तो एक बाप की प्रजा बनना है। भले फर्स्ट क्लास प्रजा बने, सेकंड क्लास प्रजा बने, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास भी प्रजा बने, लेकिन किसकी बनना है? एक बाप की प्रजा बनना है। और बाप तो हमें प्रजापद देने नहीं आए हैं, बाप हमें क्या बनाने आए हैं, राजा बनाने आए हैं। तो राजा किसी से प्रभावित होता है क्या अपनी प्रजा के अंदर? नहीं। तो राजा बनने वालों की ये निशानी है क्या? राजा वो बनेंगे जो एक बात की सीमत पर चलेंगे, कोई कीमत पर नहीं चलना। मुरली ने तो यहाँ तक बोल दिया, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। अगर उनसे पूछ के चलेंगे या उनकी मत पर चल पड़ेंगे तो 84 जन्मों में से कोई न कोई जन्म में उनकी प्रजा बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रभावित हो गई। और
भगवान
किसको कहा जाता है? अरे बताओ जल्दी, है भगवान धनवान, धनवान किसको कहा जाता है? शब्द का अर्थ होता है ना, तो धनवान का क्या अर्थ है? धन वाला। और भगवान
बाकी देने वाला,
तो बाकी
लिखता है, कहाँ आया धनवान? धन लिखता है, है कि धन वाला है, तो भगवान माने भाग्य वाला। निराकार बनता है या साकार बनता है? साकार है। हाँ तो क्या पूछना है? अरे जो भाग्यशाली ज्यादा बनेगा वो दुर्भाग्यशाली भी ज्यादा बनेगा कभी तम प्रधान होने पर, या नहीं बनेगा? भगवान तमो प्रधान में आता है, पत्थर बुद्धि में आता है या सतो प्रधान में आता है? तो तमो प्रधान हुआ ना, पतितम कामी कांटे में कौन आता है? पावन तम आता है। क्या ये दोनों का संगम है? जो एवर प्योर है उसका, और जो एवर इम्प्योर है पतित है। विषयी है या निर्विषय है? एवर पतित विषयी है। और विष किसको कहा जाता है? हैं? पवित्र को विष कहा जाता है, विष विष कहा जाता है। पराई स्त्री या परपुरुष के भोग को विष कहा जाता है। तो सबसे जास्ती वो विष है इस दुनिया में कौन सी आत्मा पीती है? इस्लाम धर्म। हम एक आत्मा की बात कर रहे हैं, शंकर वाली आत्मा पीती है। भगवान के लिए गाया हुआ है 16,000 भोग गोपियां, कहते हैं 16,000 पत्नियां थी। तो 16,000 जो पत्नियां हैं वो 84 जन्मों में अनेक देवताओं की पत्नियां हैं, देवात्माओं की पत्नियां बनती हैं या एक भगवान की बनती है? हैं? अनेकों की पत्नियां हैं ना, अनेकों की जन्म जन्मांतर की पत्नियां वो है ना। अरे औरों की पत्नियां हैं या जो षष्ठी पर सदा कायम शिव बाप है, शिव बाबा, उसकी पत्नियां बनती हैं, अनेकों की हैं, तो उन अनेकों की पत्नियों को इस संगम युग में पति से पावन बनाने के लिए अपनी पत्नी बनाए। संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? तो विषपाई हुआ या नहीं हुआ? और दुनिया का सबसे बड़ा विषपाई हुआ या नंबरवार हुआ है? सबसे बड़ा हुआ, इसीलिए कहा। नहीं समझ में आया अभी तक? हाँ। और हाँ जी, ब्रह्मा की आयु ही 100 साल है। 100 साल में जो पतित ब्रह्मा है वो खत्म हो जाता है। पतित ब्रह्मा खत्म होगा, मान लो 76 में, 36 में 60 साल, 76 में 100 साल, तो जो पहला ब्रह्मा है परम ब्रह्म वो 76 में नरक की दुनिया में, पतित दुनिया में ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाती है, तो कहाँ जन्म लेगा? उसके लिए अमरलोक शुरू हो जाता है। माना वो अनिश्चय बुद्धि मौत नहीं मर सकता, उसके लिए संगम युग में सदा काल के लिए, माने 2500 वर्ष जब तक पूरे हो तब तक वो मरने वाला है या अमर हो गया? मन बुद्धि से, शरीर से नहीं। पहले आत्मा अमर बनेगी या शरीर अमर बनेगा? आत्मा अमर बनती। तो ब्रह्मा 100 साल की आयु में जो पहला ब्रह्मा है परम ब्रह्म वो खत्म हो गया। तो क्या बन गया फिर? वो आत्मा जो पतित संकल्प करने वाली थी, विकारी संकल्प करने वाली थी, वो मनन चिंतन मंथन के श्रेष्ठ संकल्पों में आ जाती है ज्ञान के कारण, या अज्ञान में अज्ञानी संकल्प करती है? तो पतित है पार्ट बजाने वाली हुई संकल्पों से, या पावन पार्ट बजाने वाली हुई, पावन पाठधारी हुई। माना ब्रह्मा मृत्युलोक में खत्म हो जाता है 100 साल की एज में, और उसका अमर लोक शुरू हो जाता है। और
ब्रह्मा चला जाएगा तो बाप भी चला जाएगा,
ब्रह्मा चला जाएगा तो बाप भी चला जाएगा। इस दुनिया में आग लगकर पूरी होगी तो ब्रह्मा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बाप भी गया कि नहीं? मनुष्य शक्ति का, मनुष्य शक्ति का जो बाप है, जो पतित संकल्प करने वाला था, वो गया कि नहीं गया? नरक की दुनिया से वापस गया कि नहीं गया? वापस गया। और
40 वर्ष,
हाँ, जो 76 से लेकर के और 2017-18 तक रुंग सहित जो 40 वर्ष पूरे होते हैं वो समझाने का पार्ट है, उससे पहले सुनाने का पार्ट है। 77 से पहले क्या है? सुना या समझा? सुना, उसके बाद समझाने का पार्ट है 40 वर्ष का। हाँ, रमणीय आत्मा को समझाएगा। बाद में कृष्ण वाली आत्मा को समझाएगा या राम वाली आत्मा को समझाएगा? हैं? कृष्ण वाली आत्मा समझेगी?
बाप नहीं रहे।
हैं?
बाप नहीं रहे।
बाप कहते हैं, शिव बाप कहते हैं, मैं आता हूँ तो एक विरुद्ध लेकर के आता हूँ, तुम बच्चों को आप समान बना करके जाऊंगा, तो नंबर बार बनेंगे या सब एक जैसे बनेंगे? तो कोई 100% बनेगा, कोई बनेगा, तो जो बनेगा उस बच्चे को दुकान सौंपेगा षष्ठी रूपी या नहीं सौंपेगा? जो बड़ा बच्चा होता है, बाप वानप्रस्थी हो जाता है, तो दुकान संभालता है या नहीं संभालता है? इसीलिए बोला।
हाँ,
ये बात यहाँ के लिए है, मनुष्य शक्ति के बाप के लिए। मनुष्य शक्ति का बाप चला गया, जो दुष्ट संकल्प करने वाला था, विकारी संकल्प करने वाला, अब वो आत्मा निर्विकारी संकल्प करने वाली अमर लोक में आ गई या मृत्यु लोक में रही, वहां की बात। और हाँ, रमतु रमजवाद, रमता योगी हो, आज यहाँ तो कल वहाँ, ये जोगी वाला फेरा था, रमता रहता हूँ या एक जगह बैठ जाता हूँ? रमता जोगी है ना, कि एक जगह बैठने वाला है, एक व्यापी तो है, और जिसमें एक व्यापी है उसके द्वारा जो पार्ट बजाता है वो रमता जोगी का पार्ट बजाता है, कभी इधर कभी उधर, कि एक जगह बैठा हुआ है, कैसा पार्ट बजा रहा है? हाँ, लगातार रमण करने का, रमता जोगी का पार्ट बजा रहा है। और क्यों, क्या हुआ? हाँ, सर्व संबंध एक साथ होंगे या सर्व संबंधों का टाइम अलग अलग होगा? अरे, बाप भी संबंध, बाप भी संबंध बना लिया और पति का भी संबंध बना लिया उसी सेकंड में। अरे, शूटिंग का टाइम अलग अलग होगा या एक ही होगा? तो बस जब जैसी शूटिंग करेंगे उस शूटिंग के अनुसार 84 जन्मों में वैसी प्राप्ति हो जाएगी। और
बनाया है दुनिया वाले के सामने, यह बात ऐसे साबित करना है
कि शास्त्र में, गीता में या महाभारत में तो हिंसक युद्ध दिखाई दिए, लेकिन वास्तव में भगवान ने विकारों का युद्ध कराया है। ये जो विकार हमारे अंदर है, शरीर में, आत्मा में, इन विकारों का युद्ध है। जो योद्धा होते हैं, सच्चे योद्धा होते हैं, कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो भाग जाते हैं या युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं, है? तो ये भी घर गृहस्थ में विकारों का युद्ध है क्या? यहाँ भागने की बात नहीं है। बहुत सी बांधेली माताएं कहती हैं, ये नहीं मानते। अरे, वो युद्ध करना चाहते हैं तो तुम युद्ध नहीं कर सकते और युद्ध करके विजयी नहीं बन सकते। माया से युद्ध करना कैसे होता है, कैसे होता है? बाप की याद में माया से युद्ध करना है तब विजयी बनेंगे, या देवान में रह करके युद्ध करेंगे तो विजयी होंगे? तो बाप ने तो बता दिया, इसमें छोड़ छाड़ करके या डाइवोर्स दे करके भागने की क्या बात है जो ब्रह्मा कुमारियां सिखाती हैं। बाप तो ये युद्ध करना नहीं सिखाती, भागने वाला बाप खुद भी बड़े से बड़ा गृहस्थी है या छोटा गृहस्थी है जो छोड़ छाड़ करके भागता है, हैं? जब बाप नहीं भागता तो बच्चों को भागना है या याद में रह करके माया का युद्ध करना है? युद्ध करना है, भागने करने की बात नहीं।
ज्ञान का आधार पवित्रता
है,
ज्ञान का आधार पवित्रता है,
ज्ञान का आधार
पवित्रता,
पवित्रता, पवित्रता किसे कहा जाता है? शिव के मंदिर में शिवलिंग स्त्री की जलाधारी में रखा हुआ है, पवित्र है या पवित्र है? है, किस आधार पर पवित्र है? कीचड़ में तो रखा हुआ है, पवित्र कैसे है? हाँ, जो साकार है पुरुषार्थी वो बुद्धि से उपराम है, इंद्रियां तब ही अपना भोग भोगेंगी जब मन बुद्धि इंद्रियों में लिपायमान होगा। अगर इंद्रियों में मन बुद्धि लगी हुई नहीं है, शुभ आपकी याद में उपराम हो गई, तो विकारों का सुख अनुभव होगा, नहीं अनुभव हो सकता। जैसे मिसाल दिया, कोई महबूब है, अपनी महबूबा की याद में कार खाने जा रहा है, आंखें खुली हुई हैं, कार खाने पहुंचता है और कोई पूछता है कि आपने रास्ते में मुझे देखा था? वो कहता मैंने नहीं देखा। अरे कहता तुम्हारी आंखें तो खुली थी, फिर कैसे कहते हो कि नहीं देखा? तो क्या कहता है? मैं अपनी महबूबा की याद में था, ऐसी गहरी याद में था, लीन था कि मुझे कोई देखने में नहीं आ रहा। तो ऐसी याद योगी की नहीं हो सकती? हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है। और
गीता का ग्रंथ हाथ में लेकर जो पढ़ते थे, बताया
हाँ जी,
और आदि में हुआ वो अंत में
तो अभी गीता ब्रह्मा कुमारियों के ज्ञान में अभी गीता का सच्चा अर्थ नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। अरे झूठे अर्थ देने वाली गीताएं दुनिया में ढेर की ढेर गीताएं टीकाएं छपी छपी या नहीं छपी? छपी, लेकिन उन गीताओं से सभी में भगवान सर्वव्यापी साबित हो रहा है या एक व्यापी साबित होता है? और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में गीता तैयार हुई है, ईश्वरीय ज्ञान के अर्थों के मुताबिक उसमें एक व्यापी साबित होता है या अनेक व्यापी साबित होता है। तो जो आज में गीता थी वो अभी अंत में गीता नहीं निकली, निकली या नहीं निकली है? अरे बोलो, निकली और आगे चल करके और भी रिफाइंड होती जाएगी।
पढ़ेंगे
कौन? पढ़ेंगे
बाबा
पढ़ेंगे, शिव बाबा पढ़ेंगे या कृष्ण की आत्मा पढ़ेगी? पढ़ता कौन है? विद्यार्थी पढ़ता है या टीचर पढ़ता है? विद्यार्थी पढ़ता है, टीचर उसका अर्थ बताते हैं।
पढ़ने का काम पहले होगा,
अभी अभी कृष्ण वाली आत्मा
पढ़ रही,
शास्त्र नहीं पढ़ती है क्या? शास्त्रों के श्लोक नहीं बोलती है क्या? बोलती है कि नहीं? बाप जब बोलते हैं तो बाप की बोली के बीच में इंटरफियर करके ब्रह्मा की आत्मा बोलती है या नहीं बोलती है? बोलती है। शिव बाप थोड़े ही शास्त्रों को रिफर करते हैं। और है
ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष में
हाँ जी, इसका अर्थ ये है कि जो प्रजापिता है वो जब ज्ञान में आ जाता है दूसरा जन्म लेकर के, तो उसकी बुद्धि में एडवांस ज्ञान उभरता है या नहीं उभरता है? तो उस एडवांस ज्ञान की ताकत 10 गुनी बढ़ जाती है या बेसिक ज्ञान के बराबर रहती है? इसीलिए बताया ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष और 69 के बाद वही ब्रह्मा वाली आत्मा जब दोबारा ज्ञान जन्म लेकर के ज्ञान में आती है तो उसका एक एक वर्ष कितने वर्ष के बराबर हो गया है? 100 वर्ष के बराबर हो गया। संक्षेप तक आते आते वो टाइम पूरा हो जाता है 77 में संपूर्णता वर्ष। इसलिए बताया 10 वर्ष बराबर 100 वर्ष। और
रावण तो ज्ञानी है कि धारणा नहीं है?
रावण
हाँ, रावण तो ज्ञानी है कि धारणा नहीं है?
अरे जो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान नहीं है तो रावण है, और प्रैक्टिकल में जब ज्ञान समाय जाता है जीवन में तो रावण है या विष्णु है? प्रैक्टिकल में ज्ञान रावण उठाता है या लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु उठाता है? हैं? विष्णु उठाता है। और
यहाँ बाबा भी जानते हैं हमने यहाँ अपना शरीर के मकान किराए पर दिया है।
हाँ जी,
रामांतर को और मकान लेना ही नहीं है।
हाँ,
कल तो ही मकान लेना पड़ता
है
और फिर इसमें धर्म बाबा के भी पार्ट है ना तो।
अरे किस काम के लिए लिया है? आया राम गया राम धर्म पिता की तरह बोलो, धर्म पिताएं तो अपना धर्म स्थापन करते हैं, राज्य स्थापन राजधानी स्थापन नहीं करते, और मैं क्या करके जाऊंगा, मैं तुम्हारी नई दुनिया की स्वर्ग की राजधानी स्थापन करके जाऊंगा। वो तो आते हैं और चले जाते हैं, परिवर्तन तो कोई होता ही नहीं, तो कौन से ब्रह्मा के लिए बोला? हाँ जी, मुकर्रर रथ के लिए यहाँ बोल रहे हैं, वो टेम्परेरी रथ है, जो आया राम गया राम, परिवर्तन हुआ, राम राज्य आया। यह सिर्फ मुख से बोलते रहे गांधी जी की तरह, राम राज्य लाऊंगा, राम राज्य आएगा, आया राम राज्य, और ही रावण राज्य हो गया है। रावण राज्य में हिंसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? है? हाँ जी, नोटों की गड्डियां निकाल निकाल करके गवर्नमेंट में फेंकते हैं, रिश्वत देते हैं, और उल्टे उल्टे काम कराते हैं या नहीं कराते हैं? तो रावण राज्य है या राम राज्य है? और ये राम राज्य, रावण राज्य हो गया। उस रथ के लिए बाप ने नहीं कहा, बाप तो यहाँ मुकर्रर रथ की बात करते हैं। और ओम शांति।